आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
बैलेट पेपर से वोटिंग में क्या होता था हम जानते हैं। EVM के खिलाफ बहस पर बोला सुप्रीम कोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान के दौरान हर वोटर को वेरिफिकेशन के लिए VVPAT स्लिप दिए जाने की मांग वाली अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि जब सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती थी तब भी समस्याएं हुआ करती थी। बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम अपनी जिंदगी के छठे दशक में हैं। हम सभी जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो क्या स्थिति थी। आप भूल गए होंगे पर हमें सब कुछ याद है। जस्टिस संजीव खन्ना ने ADR की ओर से अर्जी दाखिल करने वाले प्रशांत भूषण की ओर मुखातिब होते यह बात कही। इस दौरान प्रशांत भूषण ने जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों का जिक्र किया और कहा कि ये सभी अब EVM छोड़कर बैलेट पेपर्स की ओर लौट गए हैं। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल पूछ लिया, जर्मनी की आबादी क्या है? इस पर भूषण ने कहा कि 6 करोड़ है। फिर जस्टिस खन्ना बोले, हमारे देश में तो करीब 50 से 60 करोड़ मतदाता है। हमारे यहाँ रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 97 करोड़ के करीब है। हम सभी जानते हैं कि तब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो क्या होता था। प्रशांत भूषण ने बेंच की ओर से बैलेट पेपर्स पर सवाल उठाने पर नया तर्क दिया। उन्होंने कहा, हम पेपर बैलेट पर वापस जा सकते हैं। एक विकल्प यह है कि VVPAT स्लिप वोटर के हाथ में दी जाए, अन्यथा VVPAT स्लिप मशीन में गिर जाती है। इन पर्चियों को वोटर को दिया जाना चाहिए और फिर उन्हें बैलेट बॉक्स में रखा जा सकता है। इसके लिए VVPAT का डिजाइन बदलना चाहिए। वोटर को साफ तौर दिखना चाहिए कि उसका मत किसे मिला है। लेकिन अभी जो व्यवस्था है उसमें 7 सेकंड के लिए ही लाइट जलती है और पता चलता है कि वोट कहां गया। बहस के दौरान एक अन्य अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि EVM से जो वोट पड़ता है उसका मिलान VVPAT स्लिप से करना चाहिए। यूपी के आदित्य श्रीवास्तव ने UPSC CAC में किया ऑल इंडिया टॉप। IPS से बनेंगे IAS अफसर, IIT से की है पढ़ाई। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में उत्तर प्रदेश के आदित्य श्रीवास्तव ने देश भर में टॉप किया है। यह उनका तीसरा प्रयास था। लखनऊ के रहने वाले UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव वर्तमान में हैदराबाद में अंडर ट्रेनिंग है। यह उनका तीसरा प्रयास था। पहले अटेम्प्ट में वे प्रीलिम्स तक नहीं पास कर पाए थे। इसके बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 की परीक्षा में उनकी 136वीं रैंक आई थी। उन्हें IPS सर्विसेज मिली थी। IAS बनने के लिए उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और एक और अटेम्प्ट दिया। इस बार अपनी कड़ी मेहनत व लगन के दम पर उन्होंने IAS के लिए क्वालिफाई किया है। आदित्य के पिता अजय श्रीवास्तव सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट में AAO के पद पर कार्यरत हैं, जबकि एक छोटी बहन नई दिल्ली में सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही है। आदित्य की मां आभा श्रीवास्तव गृहिणी हैं। बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में बोले जज साहिबा, भूल हो गयी, हम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। पतंजलि आयुर्वेद के मुखिया और योग गुरु बाबा रामदेव ने सार्वजनिक माफी मांगने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकीलों ने यह प्रस्ताव रखा। इसके बाद अदालत ने उन्हें 1 सप्ताह का मौका दिया है और अब अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दुख व्यक्त करना चाहते हैं कि जो हुआ वह गलत था। उन्होंने कहा कि हमने दावा किया था कि हमारे पास कोरोना से निपटने की एक वैकल्पिक दवा भी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस हिमा कोहली ने हिंदी में ही बाबा रामदेव से पूछा, आपने जो किया है कोर्ट के विरुद्ध किया है, क्या वह सही है? इसके जवाब में रामदेव ने कहा, जज साहिबा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हम आपके रवैये की बात कर रहे हैं। जजों ने इस दौरान बाबा रामदेव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलोपैथी पर सवाल उठाने पर भी आपत्ति जताई। इजराइल से दो कदम आगे ईरान, सीमा पर तैनात कर दिया ये ब्रह्मास्त्र, चिंता में क्यों डूबे बाइडेन बेंजामिन। इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले को 3 दिन बीतने को हैं, लेकिन अभी तक इजराइल पलटवार नहीं कर सका है। वहां की युद्ध कैबिनेट लगातार बैठक कर रही है और हमले की रणनीति बना रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को 24 घंटे के अंदर 2 बार युद्ध कैबिनेट की मीटिंग की है। इस बीच इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा है कि इस सप्ताह के अंत तक उनका देश ईरान के हमले का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि कई पश्चिमी देशों ने इजराइल से मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। हालांकि इजरायली फोर्स ने आज सेंट्रल और अपर गलीली इलाके में युद्ध का मॉक ड्रिल किया और उसके विध्वंसक विमानों ने आसमान में उड़ने भरी। इसके अलावा टैंक और बख्तरबंद वाहन भी सड़कों पर उतरे। IAF के कई लड़ाकू विमान आज आसमान में एक साथ उड़ते और युद्ध अभ्यास करते नजर आए। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले कर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया है। दूसरी तरफ ईरान ने एक बार वीडियो जारी कर इजरायल को धमकी दी है और कहा है कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कोहली की भी 4 ओवर में इतनी पिटाई नहीं होती, श्रीकांत ने RCB बॉलर्स को लताड़ा, बताया कौन है सबसे बड़ा दोषी। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के गेंदबाजों को बुरी तरह लताड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद SRH ने सोमवार को IPL 2024 के 30वें मैच RCB के खिलाफ 287/3 का स्कोर खड़ा किया और 25 रन से जीत दर्ज की। यह IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में RCB ने M. चिन्नास्वामी में 7 विकेट पर 262 रन बनाए। RCB के तेज गेंदबाज रीस टॉपली सबसे महंगे रहे। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 68 रन दिए, उन्हें 1 विकेट मिला। विजय कुमार वैशाख 64, लॉकी फर्ग्यूसन 52 और यश दयाल की भी जमकर कुटाई हुई। श्रीकांत का कहना है कि अगर विराट कोहली ने 4 ओवर डाले हो तो वह भी इतने रन खर्च नहीं करते। बता दें कि RCB का बॉलिंग अटैक मौजूदा सीजन में काफी कमजोर साबित हुआ है। टीम 7 मैचों में से 6 गवा चुकी है और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है। श्रीकांत ने अपने YouTube चैनल पर कहा, रीस टॉपली की कुटाई हो रही है, लॉकी फर्ग्यूसन रन लुटा रहे हैं, उन्होंने IPL में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने कोलकाता से लेकर बेंगलुरु तक ट्रेवल किया है, विल जैक्स उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं, बेहतर होगा कि वे 11 बल्लेबाजों को खिलाएं, फॉफ डुप्लेसी को 2 ओवर गेंदबाजी करने के लिए कहें, कैमरून ग्रीन को 4 ओवर दीजिए। मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली ने 4 ओवर डाले होते तो उनकी भी इतनी पिटाई नहीं होती। कोहली डिसेंट बॉलर हैं।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT स्मार्टकास्ट की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.hdsmartcast.com।